नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप प्रतीका से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मौजूदा वित्त वर्ष में हरियाणा में 976 खेल नर्सरियां खोले जाने को मंजूरी दी। हरियाणा के सिंचाई एवं जल संसाधन राज्य मंत्री डॉ अभय सिंह यादव ने कहा कि दिल्ली को उनके हक से अधिक पानी दिया जा रहा है। देश में 1 जुलाई से 3 नए आपराधिक कानून लागू होंगे। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को प्राथमिक साक्ष्य के रूप में मान्यता मिलेगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह 20 जून को महाराजा अग्रसेन हिसार हवाई अड्डे के दूसरे चरण के विभिन्न सिविल कार्यों का लोकार्पण करेंगे और मुख्यमंत्री ने हरियाणा राज्य शुभ्र ज्योत्सना योजना के तहत दी जा रही मासिक पेंशन में वृद्धि करने के निर्देश दिये। मुख्यमंत्री नायब सिंह ने आज वित्त वर्ष 2024-25 में हरियाणा में 976 खेल नर्सरियां खोले जाने को मंजूरी दी। उप नर्सरियों में से 196 खेल नर्सरियां सरकारी स्कूलों को दी गई हैं। इसी तरह से 115 खेल नर्सरियां ग्राम पंचायतों को, 278 खेल नर्सरियां निजी संस्थानों और 387 खेल नर्सरियां निजी स्कूलों को आवंटित की गई हैं। इन खेल नर्सरियों में 28 विभिन्न खेल स्पर्धाओं में खिलाड़ियों को पारंगत बनाया जाएगा। हरियाणा के सिंचाई एवं जल संसाधन राज्य मंत्री डॉ अभय सिंह यादव ने कहा कि हरियाणा दिल्ली को पूरा पानी दे रहा है, बल्कि उनके हक के पानी से अधिक पानी दिया जा रहा है। हरियाणा सरकार ने न कभी पहले पानी देने में कोताही की है और न आगे की जाएगी। डॉ यादव ने कहा कि हरियाणा द्वारा पूरा पानी देने के बाद भी अगर दिल्ली में पानी की कमी रहती है तो उन्हें अपने प्रबंधन को देखना चाहिए। डॉ यादव ने कहा कि दिल्ली के पानी के आंतरिक वितरण में उन्हें सुधार करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि उच्चतम न्यायालय ने आदेश दिया था कि यमुना नदी बोर्ड हिमाचल से आने वाले पानी का सत्यापन करेगा, लेकिन हिमाचल से पानी आया ही नहीं है। राज्य मंत्री ने कहा कि उच्चतम न्यायालय ने वर्ष 2002 में स्पष्ट आदेश दिए थे कि सतलुज यमुना लिंक नहर बने और उसका पानी हरियाणा को मिले, लेकिन उच्चतम न्यायालय के आदेश के बावजूद आज तक उस फैसले पर अमल नहीं हुआ। डॉ यादव ने कहा कि सतलुज यमुना लिंक नहर बनवाने का प्रयास जारी रहेगा। देश में 1 जुलाई से 3 नए आपराधिक कानून, भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 लागू हो जाएंगे। भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय दंड संहिता 1860 का और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 दंड प्रक्रिया संहिता 1973 का स्थान लेगी। इसी तरह भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 को प्रतिस्थापित करेगा। हिसार से अधिवक्ता नरेंद्र सिंह पानू ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की व्याख्या करते हुए बताया,
इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के बेस पर है, जो पहले ऐसा नहीं था। जैसे इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड कोई भी हो सकता है, ईमेल, एसएमएस, व्हाट्सएप मैसेज, टेलीग्राम एक्सेट्रा, उसके बेस भी मजिस्ट्रेट कोग्निजेंस लेके कार्रवाई कर सकता है। और पहले क्या था, वीमेन वो एफआईआर पहले नहीं कर पाते थे ऑनलाइन, लेकिन इसमें ई एफआईआर लॉन्च करने का भी प्रोविजन डाला गया है। पुलिस को 2 दिन के अंदर उसके ऊपर कार्रवाई करनी पड़ेगी कोग्निजेंस लेके। और पुलिस को स्पेशल हिदायत दी गई है इसमें, न्यू एक्ट में, कि कोई भी सर्च या सीजर, कोई भी इन्वेस्टिगेशन वो करेंगे, कोई क्राइम सीन है वहाँ पर ट्रायल के दौरान, उसकी वीडियोग्राफी उनको करनी ही पड़ेगी ताकि झूठे केस ना कर पाए। ट्रांसपेरेंसी आई इसके अंदर, कई लोग कहते हैं मैं झूठे केस में फंसा दिया है। और एक प्रोविजन ये भी डाला गया है, कोई भी प्रॉपर्टी सीज की जाती है, पकड़ी जाती है किसी भी क्राइम में, पुलिस स्टेशन में खड़ी खड़ी वो खराब हो जाती है, कोई गाड़ी है, कोई व्हीकल है, कोई भी सामान है, तो उसके लिए प्रोविजन ये है कि 30 दिन के अंदर पकड़ने के बाद उसको बेच सकते हैं और जो कोर्ट का जो अकाउंट है, पैसे जो मिलेगा, उसमें जमा कर दिया जाएगा। और ऐसे जो साक्ष्य अधिनियम आया है उसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है, उसको एडमिसिबल माना जाएगा। पहले क्या था, कुछ कंडीशन होती थी तभी माना जाता था, लेकिन अब इसकी ऑथेंटिसिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि आज के जो दौर है इसमें इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस की ज्यादा ही डिमांड हो गई है और सबूत भी ज्यादातर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ही मिलते हैं।
श्री पानू ने बताया कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को प्राथमिक साक्ष्य के रूप में मान्यता देता है। नए आपराधिक कानूनों में न्याय एवं निष्पक्षता बनाए रखते हुए समकालीन समाज की जटिलताओं का हल किया गया है। 18वीं लोकसभा का पहला सत्र इस महीने की 24 तारीख से शुरू होगा। इस सत्र में नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई जाएगी और लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव किया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू संसद के दोनों सदनों को संबोधित करेंगी और उनके अभिभाषण पर चर्चा होगी, जबकि राज्यसभा का सत्र भी इस महीने की 27 तारीख को शुरू होगा। संसद सत्र अगले महीने की 3 तारीख को समाप्त होगा। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में यह जानकारी दी। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह 20 जून को महाराजा अग्रसेन हिसार हवाई अड्डे के दूसरे चरण के विभिन्न सिविल कार्यों का लोकार्पण करेंगे। नागरिक उड्डयन मंत्री डॉ कमल गुप्ता ने आज चंडीगढ़ में हिसार हवाई अड्डे तामवाला में सिविल एनक्लेव की स्थापना को लेकर नागरिक उड्डयन विभाग अम्बाला से वायुसेना तथा भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करने के बाद ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि अधिकारियों को अम्बाला में स्थापित किए जा रहे सिविल एनक्लेव के बारे वायुसेना के साथ हुए समझौते तथा भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अधिकारियों के साथ मिलकर कार्य को आगे बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। डॉ कमल गुप्ता ने बताया कि हिसार हवाई अड्डे पर हरियाणा विमानपत्तन विकास निगम के अध्यक्ष का कार्यालय एटी रनवे कैट आई एटीसी जीएससी पीटीटी लिंक टैक्सी बेसिक स्पीड पैरामीटर रोड और बरसाती नाला बनाने का कार्य लगभग पूरा हो गया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने अधिकारियों को हरियाणा राज्य शुभ्र ज्योत्सना पेंशन योजना के तहत दी जा रही मासिक पेंशन में वृद्धि करने के निर्देश दिए हैं। इस योजना के तहत अभी 15,000 रूपये पेंशन दी जा रही है। पेंशन योजना के लाभार्थियों की संख्या लगभग 900 है। उन्होंने मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत दी जाने वाली 71,000 रूपये की राशि में से 61,000 रूपये पंजीकरण के साथ ही जारी करने की हिदायत भी की ताकि संबंधित लाभार्थी अपनी बेटी की शादी के लिए इस राशि को प्रयोग कर सके। हरियाणा सरकार ने प्रदेश में विवाह पंजीकरण प्रक्रिया को आसान बनाते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में सिटी मजिस्ट्रेट तहसीलदार नायब तहसीलदार व खंड विकास पंचायत अधिकारी सहित ग्राम सचिव को विवाह पंजीयक यानी मैरिज रजिस्ट्रार के रूप में नामित किया है। इससे पहले ग्रामीण स्तर पर केवल तहसीलदार के पास ही विवाह पंजीकरण का अधिकार था। इसी प्रकार शहरी क्षेत्रों के लिए संयुक्त आयुक्त कार्यकारी अधिकारी सचिव नगर समिति तहसीलदार व नायब तहसीलदार नामित रजिस्ट्रार होंगे। सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि सरकार द्वारा इस संबंधी अधिसूचना जारी कर दी गई है। हरियाणा के स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा व अनुसंधान एवं आयुष मंत्री डॉ कमल गुप्ता ने आज 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारियों के संबंध में आयुष विभाग तथा हरियाणा योग आयोग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। डॉ गुप्ता ने बताया कि हरियाणा सरकार ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर सभी जिलों में जिला एवं खंड स्तर पर सुबह 7 से 8 बजे तक योग कार्यक्रम आयोजित करने का निर्णय लिया है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम में भाग लेने वाले प्रतिभागियों को योग प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए 29 मई से योग प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं जो 15 जून तक जारी रहेंगे। उन्होंने बताया कि 13 से 16 जून तक जिला स्तर पर 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में मंत्रियों सांसदों विधायकों प्रशासनिक अधिकारियों सभी विभागों के अन्य अधिकारियों व कर्मचारियों निर्वाचित सदस्यों पुलिस विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों एनसीसी व स्काउट कैडेट नेहरू युवा केन्द्र के कर्मियों एवं इच्छुक जनसाधारण को योग प्रशिक्षण दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि 19 जून को सुबह 7 से 8 बजे तक सभी जिलों में मुख्य कार्यक्रम के लिए प्रायोगिक अभ्यास होगा और जिला स्तर पर जिला प्रशासन द्वारा योग मैराथन का आयोजन किया जाएगा। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।